नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कल बातचीत होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे।
रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद साझेदार रहा है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नई मजबूती आई। दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान इस रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाकर विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। भारत और रूस के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना एक बड़ी प्राथमिकता है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाना है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोक आज नई दिल्ली में 22वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान सैन्य मुद्दों और सैन्य तकनीकी सहयोग पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोनों मंत्री बैठक के दौरान रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा करेंगे। इस बीच भारत और रूस के बीच बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा और इलेक्ट्रिक वाहनों की वार्षिक बिक्री 1 करोड़ रुपए होगी। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री गडकरी ने बताया कि वर्तमान में देश में 57 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 7.4% कर दिया है। उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी और हाल के जीएसटी सुधारों से बेहतर आर्थिक माहौल बनने को इसका प्रमुख कारण बताया गया है। संशोधित दर पहले के 6.9% के अनुमान से अधिक है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिन के गहन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिला तथा बाल विकास मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। यह अभियान अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वन्य जीवों की रक्षा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना भारत के सभ्यगत लोकाचार का भिन्न अंग है और आज भी इन प्रयासों में यही भावना देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर सभी वन्य जीव प्रेमियों और चीतों की रक्षा के लिए समर्पित संरक्षणवादियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने चीतों को धरती के सबसे महत्वपूर्ण वन्य जीवों में से एक बताया और 3 साल पहले शुरू किए गए प्रोजेक्ट चीता की सफलता को याद किया। आज नौसेना दिवस है। भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर सभी भारतीय नौसेना कर्मियों, पूर्व नौसैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई क्षति को स्वीकार करते हुए बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा झूठा और निराधार है। भारत सरकार ने एमवी इटर्निटी सी जहाज के चालक दल के सदस्य अनिल कुमार रविंद्रन की यमन से रिहाई का स्वागत किया है। सरकार ने भारतीय चालक दल के सदस्य की रिहाई में सहयोग के लिए ओमान सरकार का भी आभार व्यक्त किया है। दितवा तूफान से प्रभावित श्रीलंका में मृतकों की संख्या 479 हो गई है, जबकि 350 लोग अब भी लापता हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।